أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کا یہ خطبہ میں ناروے کے دارالسلطنت اوسلو سے دے رہا ہوں. ناروے کی جماعت بھی ان جماعتوں میں سے ایک ہے جن میں گزشتہ چند سالوں سے بارہا کئی قسم کے مسائل پیدا ہوتے رہے اور کئی قسم کی سرکشیوں نے سر اٹھایا. ایسے لوگ چند گنتی کے ہوں گے, کیونکہ میرا حسن ظن اس جماعت پر یہی ہے کہ جماعت کی بھاری اکثریت اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقویٰ کے ساتھ جماعت سے وابستہ ہے اور پوری وفا کے ساتھ نظام جماعت کے ساتھ منسلک ہے. لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے, بعض دفعہ ایک مچھلی بھی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. عملاً الہی جماعتوں میں جب فطرے پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے, خواہ وہ عمدن کی جائے یا بغیر معلوم ہوئے ایک فتنہ برداز اپنی شخصیت کو پہچانے بغیر فتنے پھیلا رہا ہوتا ہے اور اس کو علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. جو بھی صورت ہو, مچھلی خواہ ایک ہو یا دو یا تین ہوں, ان مچھلیوں کا پھیلایا ہوا گند چاروں طرف پھیلتا ہے اور تالاب کا پانی ضرور گدلا دکھائی دینے لگتا ہے. اس لیے جہاں بھی اس قسم کے لوگ پہنچیں اور ان کی شرارت اور ان کے فساد کو بروقت دبایا نہ جائے, اس کا نقصان لازماً جماعت کو پہنچتا ہے اور یہ جماعت کی بدنصیبی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو, چھوٹی چھوٹی بدتمیزیوں کو دیکھتی ہے اور انہیں برداشت کرتی چلی جاتی ہے اور بروقت اقدام نہیں کرتی, جس کے نتیجے میں بعض دفعہ بہت گہرے نقصان پہنچ جاتے ہیں. جماعت ناروے میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے نظم و ضبط کو بلائے طاق رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ کے وقار کو مجروح کرنے والی حرکتیں کیں اور مسلسل یہی سمجھتے رہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں اور باقی سب لوگ گندے ہیں, اور نتیجتاً رفتہ رفتہ سرکشی پیدا ہونے لگی اور امیر کی موجودگی میں بھی اور مجلس عاملہ میں بھی, مسجد میں, مجالس میں بلند آواز سے بدتمیزی کی باتیں ہوتی رہیں. تو سب سے پہلے جس فتنے سے مجھے تکلیف پہنچی, یہ وہ فتنہ تھا. لیکن افسوس ہے کہ جن لوگوں کے پر ذمہ داری کی جاتی ہے, اگر وہ خود بروقت مناسب اقدام کی اہلیت نہیں رکھتے تو مجھے وقت پر مطلع کیوں نہیں کرتے؟ فتنے جماعت میں پل ہی نہیں سکتے. اگر جماعت کو یہ معلوم ہو جائے کہ خلیفہ وقت کا یہ منشا ہے तो नामुमकिन है कि ये जमात किसी फितना परदाश्त को अपने अंदर जगह दे। लेकिन लाइल्मी में बहुत से लोग धोखा खाते और किसी न किसी तरफ मुलव्वस होते चले जाते हैं। एक तरफ की बातें सुनते हैं, समझते हैं कि हाँ ये सच्ची बात कर रहा है, और बाद दफा बात सच्ची भी होती है, मगर कहने का अंदाज झूठा है, कहने का अंदाज फितना है। चुनाचे वो मुनाफिकीन जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा कहते थे, कुरान करीम ने उनका जिक्र करते हुए फरमाया बात तो सच्ची करते हैं लेकिन हैं झूठे लोग। तो बाद दफा बातें सच्ची होती हैं लेकिन उनका मकसूद, बातें करने का मकसूद फितना है। चुनाचे ऐसे लोग जब ऐसे बात दोस्तों से सुनते हैं कि जी फलां दोस्त में ये नफ्स है, फलां में ये नफ्स है, और अमीर साहब इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता, तो बाद नकायस वाकयातन होते हैं। इसलिए बाद सादा लोग इंसान उसमें धोखे में मुबतला हो जाते हैं। लेकिन मोमिन के मुतल्लिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उसकी सादगी इन मानों में सादगी नहीं कि वो बेवकूफ हो, वो खुदा के नूर से देखता है। हर ऐसा शख्स जिसको तकवा की रोशनी नसीब हो वो कभी ऐसे धोखे में मुबतला नहीं हो सकता। तकवा के मेयार में कुछ कमी है जिसके नतीजे में ऐसा वाक्य होता है। एक तरफा बातें सुनने का चस्का पड़ जाता है और रफ्ता रफ्ता ये महसूस किए बगैर कि इससे कितना बड़ा नुकसान जमात को पहुंच सकता है, कुछ लोग एक तरफ एक ग्रोह में बटने लगते हैं, कुछ दूसरी तरफ दूसरे ग्रोह में बटने लगते हैं। फिर एक और बेहूदा फितरे ने इस रंग में सर उठाया। एक साहिब जिनके स्कूल जमात का एक ओहदा था और बड़ा अहम ओहदा था, वो जमात के प्रेसिडेंट के गरेबान पर हाथ डालते थे, बदतमीजी करते थे और बाज़ दफा जिस्मानी तौर पर ज़द्दोकूब भी किया। ये वो जमाना है जबकि हमारे नॉर्वे के अमीर मुकर्रम नूर बोस्ताद साहिब थे, और उनको तो चूंकि लंबा इंतजामी तजर्बा नहीं था, वो इस किस्म की बेहूदा हरकतों और बदतमीजियों से ऐसे दिल बर्दाश्त हुए कि एक दफा उन्होंने मुझे लिख भेजा कि मुझसे अब मजीद काम नहीं हो सकता, ये लोग इस सृष्ट के लोग हैं, इस मिजाज के लोग हैं कि मैं इनसे निपट नहीं सकता, मैंने बहुत कोशिश की इसलाह की मगर ये बाज नहीं आए। वो तो लाइल थे, अगर उनको पहले पता होता ऐसी सूरत में फौरी तौर पर ऑपरेशन करना पड़ता है, जहां दवाओं से मरज ना संभलता हो वहां जर्राही के सिवा इलाज कोई नहीं, और फौरी जर्राही हमेशा बेहतर नतीजा दिखाती है। उनको यह भी इल्म नहीं था कि इस ऐसे मामलात को फौरी तौर पर मेरे इल्म में लाना चाहिए, लेकिन जो मुरब्बी वहां मौजूद थे उस वक्त उनके नायब अमीर थे, उन्होंने आंखें बंद रखी, पहले फितने से भी आंखें बंद रखी और बाद के फितने से भी आंखें बंद रखी, और इसको शायद वो अपनी शफकत समझते हों, और यहां के लोग भी यही समझते थे कि बड़े ही नरम मिजाज, हलीम तबा और शफीक मुरब्बी हैं। जब अमीर थे उस वक्त भी फितनों से आंखें बंद रखी कि लोगों को कहीं तकलीफ न पहुंचे, और जब नायब अमीर हुए तब भी फितनों से आंखें बंद रखी। इसका नाम हिल्म नहीं है, इसका नाम इंतहाई सादा लोही, जो जिसके लिए असल लफ्ज तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि इससे दिल मजरूह होंगे, लेकिन अमरे वाकया यह है कि जो जमात को अहदेदार ऐसी बातों से सरफ नजर करता है, वो खास कैसा ही नेक और बुजुर्ग और सिलसिले के वफादार क्यों न हो, उससे जरूर सिलसिले को नुकसान पहुंचता है। ऐसे मौकों पर तकवा का तकाजा यह है कि वफा के आला तकाजों को पूरा किया जाए, जाती ताल्लुकात और जाती दुश्मनियों को सरासर भुला दिया जाए। ऐसे शख्स का फर्ज है, हर ऐसे शख्स है जिसके इल्म में ऐसी बदअखलाकियां आती हैं, कि वो अव्वल तो फौरी तौर पर बीमार लोगों को समझाने की कोशिश करे, अगर वो नहीं समझते तो अफसर बाला को बताएं, अगर वो इल्जाम नहीं करते तो फिर ऊपर बात पहुंचाएं। लेकिन ऐसा होने की बजाय जमात में चेंबुगुइयां होती रहीं और उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये पहुंचा कि नॉर्वे के एक रहत मुस्तफी और बुजुर्ग इंसान जो नॉर्वेजियन कौम से ताल्लुक रखते थे, जिनको मैंने अमदन इस कौम की तरबियत की खातिर अमीर मुकर्रर किया था, वो इस ऐसे नेक और पारसा अमीर से महरूम रहे। जर्मनी में भी ऐसे फसादात हुए, लेकिन जर्मनी में फसादात की कुछ मुख्तलिफ नौयत भी थी। और दूसरी बात यह है कि अमीर साहब जर्मनी को अल्लाह तआला ने बेहद हौसला अता फरमाया है और हर शख्स में वो हौसला नहीं होता। उनके अंदर अल्लाह तआला ने जो खूबियां रखी हैं उनमें से एक सब्र की खूबी है। लंबे अरसे तक वो सब्र के साथ तकलीफों को बर्दाश्त करते रहे और दो तीन दफा मेरे इल्म में दिलाए, मैंने भी कोशिश की, जब बीमारी ठीक न हुई तो बिलाखिर गुज़श्ता खुतबे में जो मैंने हालात बयान किए हैं वो हालात रूनुमा हुए और यहां तक मामला पहुंचा। नॉर्वे में बाद में फितने ने एक और रंग इख्तियार कर लिया। बाद लोग जो अमीर से, जो मौजूदा अमीर हैं, उनसे दिल बर्दाश्ता थे, खानगी झगड़ों की बिना पर या किसी और वजह से, उनको नायब अमीर साहब ऐसे मिल गए जो उनकी बातें सुनते थे, ऐसे और अहदेदार मिल गए जो जैली तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले अहदेदार थे, जिनका हरगिज काम नहीं है कि वो जमाती निजाम में दखल दें और जमात के खिलाफ बातें करने वालों को दिलजोई करें और उनकी हौसला अफजाई करें और हमदर्दियों का इजहार करें। और फितना जब भी इस मुकाम तक पहुंच जाता है कि बड़े अहदेदार हमदर्दी और शफकत से फितना परदाजों से गुफ्तगू करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो फिर सारी जमात को बड़ा सख्त खतरा दरपेश हो जाता है। और पहली दफा फिर मैंने वहां बाकायदा ऐसे आसार देखे कि फितना परदाज बाकायदा एक पार्टी बनते चले जा रहे थे और दोनों तरफ के खतूत मुझे मिलते थे, साफ पता चलता था कि ये दोनों जमातें एक इलाही जमात की तरफ मंसूब नहीं हो सकती। अगर एक इलाही है तो दूसरी जरूर शैतानी है, क्योंकि इस किस्म के फटे हुए गुरु तौहीद में नहीं समा सकते और खिलाफत इस्लाम में तौहीद की निगरानी करना सबसे बड़ा फरीजा है। आयत इस्तिखलाफ का जो आखिरी नतीजा खुदा तआला ने निकाला है वो तौहीद पर मोमिनों की जमात को कायम रखना है। जो खिलाफत से काटे जाते हैं वो तौहीद से काटे जाते हैं, यानी खुद मुंतशिर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। नाम के 72 फिरके, लेकिन हर फिरके में 72 फिरके होते चले जाते हैं। बस इसलिए ये मेरे अवलीन फराइज में से है, अगर मैं इस फरीजों को अदा न करूं तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। जमात को इकट्ठा एक हाथ पर रखना मेरे फराइज में से है, जिससे मैं हर किसी कीमत पर रूबरदारी नहीं कर सकता। इस मामले में मैं किसी का दोस्त नहीं हूं सवाए खुदा के। और अगर कोई ये समझता हो कि मुझसे अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझसे मोहब्बत के देरीना मरासिम चले आ रहे हैं, मैं उससे प्यार करता हूं, तो ये वहमा दिल से निकाल दे। मेरा प्यार उस हद पर जाके रुक जाता है जहां वो खुदा की मुकर्रर करदा हदों को फलांग कर बाहर निकलता है और मुझमें गुंजाइश और तौफीक ही नहीं है कि ऐसे शख्स से कोई प्यार का ताल्लुक रख सकूं। तो ऐसे मौके पर वो बार दफा मुझे वास्ते देता है कि आप तो बड़े शफकत करने वाले, आप तो बड़े मेहरबान हैं, आप हमेशा मुझसे इस तरह किया करते थे, अब क्यों आंखें फेरी हैं। तो मैं उनको बताता हूं कि आंखें फेरने वाला वो होता है जो खुदा और उसके दीन से आंखें फेर ले, जो दीन के आला तकाजों से आंखें फेर ले, जो दीन के आला मफादात से तकाजे आंखें फेर ले। अगर वो खलीफा वक्त उससे आंखें न फेरे तो उसकी आंखें देखने के लायक नहीं, नूर बसीरत से आई आंखें। और खुदा मुझे ऐसी तौफीक न दे कि मेरी आंखें भी इस तरह अंधी हो जाएं कि जिनकी आंखें निजामे जमात से फिर रही हों मेरी आंखें उनको मोहब्बत से देखें। यह हो नहीं सकता। इस फितने में जब यहां तक सर उठाया तो मुझे कुछ इकदाम करने पड़े। और अजीब बात है कि जो लोग मुलव्वस होते हैं वो आखिर वक्त तक अपने आप को मजबूर ही समझ रहे होते हैं, कोई ना कोई बहाना पेश नजर रखते हैं, हालांकि ये बात नहीं सोचते कि उनकी इन हरकतों के नतीजे में जमात जरूर बट रही है और निजाम जमात को नुकसान पहुंच रहा है। आखिरी फैसला इस बात से होना चाहिए कि जो बातें मेरे इल्म में आई हैं अगर वो गलत हैं तो उनका सही इलाज क्या है। हर वो इलाज गलत और झूठा है जिससे निजाम जमात को किसी तरह की आंच आए और बाद लोग निजाम से दिल बर्दाश्ता हों और मोमिनों की जमात में तफरीक पैदा हो। सवाल यह है कि क्या अमीर कभी गलती नहीं करता? यकीनन करता है। कई अमीर हैं जो ना सिर्फ अपने फराइज से गाफिल हो जाते हैं बल्कि अहबाब जमात से वैसा मोहब्बत और शफकत का ताल्लुक नहीं रखते जैसा कि उनके मनसब का तकाजा है। ऐसे भी अमीर हैं जो बाद लोगों के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत का ताल्लुक रखने लग जाते हैं और वो लोग उन अमीरों से खेलते हैं और उनको ये बताते हैं कि फलां शख्स तो तुम्हारे खिलाफ है, फलां जमात तुम्हारे खिलाफ है, अगर तुमने उनके साथ किसी किस्म का निजामे जमात में सख्ती का बर्ताव किया तो वो फसाद बर्पा करेंगे और तुम्हारे सामने कहने की जरूरत नहीं मगर तुम्हारे पीछे ऐसी बातें करते रहते हैं। और बाद अमीर अपनी बेवकूफी में इन लोगों के हाथों में खेलते और बेवजह बजाय फितने को दबाने के फितने को हवा देने का मुझे बन जाते हैं। इसलिए इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा कि अमीर गलती कर सकता है, अमीर गलती कर सकता है। बहुत से उमरा हैं जिनको अपने ओहदों से माजूर किया गया है, उनके ऊपर कमीशन बिठाए गए, उनकी निगरानी की गई। कई किस्म की गलतियां इंसान को लाहक हैं। अमारत के निजाम का तरीक यह है कि जमात अपने तौर पर हसब तौफीक जिसको सबसे अच्छा मुत्तकी और परहेजगार समझे उसी को अमीर चुनती है, लेकिन जहां जमात में इंतखाब की सलाहियत पूरी ना हो, जहां जमात में खुद तकवा का मयार गिरा हुआ हो बाज जगहों पर, जहां जत्थे बन रहे हों, खानदानी पार्टियां बनी हुई हों, वहां अक्सर औकात अमीर के इंतखाब में गलती हो जाती है और जब एक दफा गलती हो तो उसके नुकसान फिर जमात को पहुंचते रहते हैं। इसीलिए निजाम जमात में खलीफा वक्त को आखिरी इख्तियार है कि जिस इंतखाब को चाहे रद्द कर दे, लेकिन बाद दफा उस अमीर की गलतियां या जमात की गलतियां फौरी तौर पर सामने नहीं आती, कुछ वक्त लगता है और ऐसे मौकों पर इकदाम किया जाता है। तो ये कहना गलत है कि अमीर गलती नहीं कर सकता इसलिए मैं अमारत का साथ दे रहा हूं। इस मजमून को समझाने की जरूरत है। मैं अमारत का साथ देता हूं इन मानों में कि जब तक कोई अमीर मुकर्रर है, हजरत अब्दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक लाजिमन उसके साथ अतात का ताल्लुक रखना होगा, लाजिमन हर उस शख्स से बेजारी का इजहार करना होगा जो अमीर की अतात के खिलाफ बातें करता है या उसके खिलाफ दिल भरता है। रहा यह मामला कि अमीर से गलतियां होती हैं, उनका इलाज और है। उनका इलाज यह नहीं है कि एक बीमारी को दूर करने के लिए 100 बीमारियां फैला दी जाएं। बाद लोग अमीर के मुतल्लिक जब ये सुनते हैं कि ये अतात करो और वो जब भी कहे जो कुछ कहे, अगर वो निजाम जमात के अंदर है, मारूफ के खिलाफ बात नहीं, तो अपनी नफरतों को भुलाकर भी उसके सामने सर तस्लीम खम करो। वो कहते हैं ये तो फिर डिक्टेटरशिप हुई। और बाद जमातों में जब अमीर के साथ इख्तलाफ हुए, खा वो गलत ही अमीर की भी हो, बाद लोगों ने अनोरा से बड़ी सख्ती की और उनको बार बार डिक्टेटर 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 के ताने दिए। ये कहकर उन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। अगर अमीर किसी पर बिल इरादा या बिला इरादा जुल्म करता है तो याद रखे हर ऐसा शख्स अगर वो निजाम जमात और खुदा की खातिर सब्र से काम लेता है तो खुदा के फरिश्ते और खुदा की सारा निजाम उसकी ताईद में खड़ा होगा और जरूर उसके लिए राहत के समान फरमाएगा, दीन में भी उसको, दुनिया में भी उसको जजा देगा, आखिरत में भी उसको जजा देगा। लेकिन अगर वो सब्र से काम नहीं लेता तो उसके लिए दो तरीके हैं। अव्वल ये कि जैसा कि निजाम मुकर्रर है वो बाला अफसरों तक शिकायत पहुंचाए, بجائے اس کے کہ غیر متعلقہ لوگوں سے باتیں کرے. جب وہ افسر بارہ تک شکایت پہنچاتا ہے اور وہ نہیں سنتا تو پھر بالآخر بات خلیفہ تک پہنچتی ہے. اور میں نے تو یہاں تک اعلان کر رکھا ہے کہ سارے درمیان کے واسطے بے شک چھوڑ دو, صرف ایک واسطہ اختیار کرو جس کے خلاف شکایت کرنی ہے, تقویٰ سے کام لو, اس کی معرفت کرو تاکہ تمہاری شکایت غیبت نہ بن جائے, چغل خوری نہ ہو, اس کو علم ہو کہ میرے متعلق کیا کہا جا رہا ہے اور اس کی نقل مجھے بھیجوا دو. اگر تمہیں یہ شک ہے کہ وہ اس چٹھی کو دبا کر بیٹھ جائے گا تو پھر مجھ پر چھوڑو. تو اول تو پہلی بات یہ کہ جس شخص کے اوپر ایک اور نگران بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کرے بلکہ انصاف پر قائم رہے, ایسے شخص کو ڈکٹیٹر کا دانا دیا ہی نہیں جا سکتا. ڈکٹیٹر تو مطلق العنان اور خود مختار ہستی کو کہتے ہیں, جو چاہے کرے, ہر قانون اس کے تابع ہوتا ہے. ایک امیر بیچارہ ڈکٹیٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر نظارتیں ہیں, اس کے اوپر وکالتیں ہیں, اس کے اوپر خلیفۃ المسیح کی نگرانی ہے. جب یہ سارے رستے شکایت کے کھلے ہیں تو ان رستوں کو چھوڑ کر عوام الناس کی عدالت میں پہنچنا یہ روحانیت کے خلاف ہے اور نظام جماعت میں کسی قیمت پر برداشت نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس طرح فتنے پیدا ہوتے ہیں. یہ جماعت الہی جماعت ہے, کوئی احراری جماعت تو نہیں. احراری جماعت اور الہی جماعت میں زمین آسمان کے فرق ہوتے ہیں. احراری جماعتوں میں بدتمیزی, بدخلقی, بدگوئی, ہر قسم کی پارٹی بازی یعنی سیاسی جماعتوں کی بدترین قسم ہے. الہی جماعت ایک پاکیزہ جماعت ہے, اس کے معاملات سارے خدا کی خاطر ہوتے ہیں, عہدے ذمہ داریاں ہیں, نہ کہ اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے کوئی شخص انہیں استعمال کرتا ہے. عہدے داری تو ایک بہت ہی بڑا بوجھ ہے. جن لوگوں نے الہی جماعتوں میں مناسب کی حقیقت کو سمجھا ان میں ایسے بھی پیدا ہوئے جیسا کہ حضرت امام مالک, جن کو عہدہ قبول نہ کرنے کی سزا کے طور پر کوڑے مارے گئے اور ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ بعد میں ان کے ہاتھ چھل ہو گئے اور وہ اٹھ نہیں سکتے تھے. اور بھی بہت سے عالم اسلام میں, اب پہلے اسلام کے دور میں جبکہ تقویٰ کا معیار بہت بلند تھا, ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ ایک شخص عہدے سے ڈرتے ہوئے توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو عہدے کے لائق نہیں ہوں, میرے پر نہ کرو, اور بادشاہ وقت زبردستی سزا دے کر بعضوں کو قید کیا گیا, بعضوں کو کوڑے برسائے گئے, بعضوں کو اور سزائیں دی گئیں, حکمن ان کو مجبور کیا جاتا رہا کہ تم یہ عہدہ قبول کرو. کہاں یہ نظام اسلام جس میں عہدے سے خوف پیدا ہوتا ہے, دل ڈرتے ہیں کہ میں ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکوں گا کہ نہیں, کہاں ان عہدوں کو ڈکٹیٹرشپ قرار دے دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ بھی دنیا کے مناصب ہیں جن میں سے ایک منصب پر یہ شخص فائز ہو گیا ہے جو مجھے پسند نہیں. یہ باتیں تقویٰ کی روح سے آ رہی خالی ہیں اور نظام جماعت میں کسی طرح بھی ان کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. ایک دو ہوں اور اس وقت پکڑا جائے تو بہت بہتر ہے, بجائے اس کے کہ یہ عام بیماریاں بن جائیں. اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خلیفہ وقت کبھی بھی کسی امیر کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جماعت پر کسی قسم کا ظلم کرے. اگر ایک فرد کی شکایت بھی پہنچے تو اس کی پوری طرح تحقیق کی جاتی ہے اور امیر کو جواب دہ بنایا جاتا ہے اس بات کے لیے. اور ایسے واقعات کئی ہو چکے ہیں جن میں ایک شخص نے جب مجھ تک شکایت پہنچائی کہ فلاں عہدیدار کی طرف سے, خواہ وہ امیر تھا یا وکیل تھا یا ناظر تھا, مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے, تو بلا تاخیر میں نے ایسی تحقیق کروائی ہے جو کلیتاً آزاد تحقیق تھی. اور بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ شاید اس تحقیق میں بھی کسی نے اثر ڈال لیا ہوگا. ایسے لوگوں کو بعض دفعہ میں یہاں تک کہتا رہا ہوں کہ تم اپنے نمائندے مقرر کرو جو ساتھ بیٹھے ہیں اور پھر مجھے بتاؤ اپنے نمائندوں سے سن کر کہ کیا ناجائز حرکت ہوئی ہے. جس عہدیدار کے سر پر ایسا زبردست نظام موجود ہو کہ وہ ذرا بھی راہ راستے ہٹے تو اس کی نگرانی کی جائے, اس کے متعلق تحقیقاتی کمیشن بیٹھیں, اور اس کو اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی پاداش میں اس کو عہدے سے معطل یا معذور کرنا پڑے. ایسے شخص کو ڈکٹیٹر کہہ دینا بڑا ظلم ہے. نظام جماعت میں کوئی ڈکٹیٹر ہو ہی نہیں سکتا, خدمت کرنے والے لوگ ہیں. ایک سیکٹری مال ہے بیچارہ, وہ سوائے اس کے اس کو مشغلہ ہی کوئی نہیں کہ پیسے اکٹھا کرتا پھرے. خدا کی خاطر, دنیا جب اپنے پیسے اکٹھے کرنے میں مصروف ہوتی ہے, وہ گھر گھر پھرتا ہے, دروازے کھٹکھٹاتا ہے, اپنے حساب کتاب لے کر رات کو بیٹھ جاتا ہے. بعض کے بیوی بچے مجھے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی تو کچھ رہنے دیں, اس کا یہ تو دن رات جماعت کے کاموں میں ہے. بعض ایسے عمراء ہیں جن کے بیوی بچے مجھے بتاتے ہیں کہ مدتیں ہو گئیں ہمارے بچوں نے ان کو نہیں دیکھا, رات کو دیر سے آتے ہیں کام کر کے, صبح جلدی چلے جاتے ہیں, اور سوائے نظام جماعت کے اور ان کو ہے ہی کچھ نہیں, ہمارے تو کسی کام کے نہیں رہے. لیکن ہمارے واقعہ یہ ہے کہ وہ ان کے اتنے کام کے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں. ان کی برکتیں وہ نسل ہی نہیں بلکہ نسلن بعد نسلن ان کی اولاد پاتی رہے گی, اور آسمان سے یہ برکتیں بارش کی طرح ان پر نازل ہوں گی. ایسے وفاداروں کو خدا کبھی تنہا نہیں چھوڑا کرتا, کبھی بے جزا کے نہیں چھوڑا کرتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رسال کے بعد حضرت اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا, دیکھو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا باپ تمہارے لیے خالی گھر چھوڑ گیا ہے, کبھی یہ بہن دل میں نہ رہنا, یہ وہ گھر ہے جس پر ہمیشہ برکتیں برستی رہیں گی, تم پر, تمہاری اولادوں پر, تمہاری اولادوں کی اولادوں پر. ایسے دعاؤں کے خزانے سے خزانے بھر گیا ہے اس گھر میں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو نظر کی بات ہے, دیکھنے کی بات ہے. جن نظروں کو خدا تعالیٰ نے نور عطا کیا ہو ان کو یہ برکتیں دکھائی دیتی ہیں مگر بعضوں کو نہیں دیتی, اور کسی نہ کسی حد تک شکوہ واجب بھی ہے. چنانچہ میں بعض دفعہ حکمن ایسے عہدیداران کو کہتا ہوں, تم اتنی دیر کے لیے کام سے الگ ہو, یا زبردستی چھٹی دلواتا ہوں. بعضوں کو میں نے یہ کہہ کر چھٹی رخصت پر بھیجوایا کہ تم اتنی دیر اپنے خاندان کو لے کر کسی اچھے خوبصورت مقام پر جاؤ اور ان کے ساتھ کچھ دن زندگی بسر کرو, اور تمہیں یہ حکم ہے, تم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور جماعت کو جو اچھا خلافت سے تعلق ہے اس میں کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ حکم دینے والے, آپ دین کی باتیں کریں, آپ کو ہماری ذات سے کیا تعلق. ہر شخص جس سے میں ایسی بات کرتا ہوں مجھے علم ہوتا ہے کہ اس کا مجھ سے ایک ایسا تعلق ہے کہ باپ بیٹے کو حکم دے سکتا ہے تو اس سے بڑھ کر وہ میرے حکم کو قبول کرے گا. اور یہ تعلقات اور مضمون کے تعلقات اور نو کے تعلقات ہیں, دنیا کو ان کی خبر ہی کوئی نہیں. ایسے حالات میں ایک امیر کو یہ تانا دے دینا کہ تم ڈکٹیٹر ہو نہایت لغو بات ہے, ایک دن کا غصہ اتارنے والی بات ہے. اگر امیر نے کوئی ظلم کیا تھا تو جب تک یہ بات نہیں کہی اس وقت تک خدا کے فرشتے اس کو ڈکٹیٹر شاید کہتے ہوں, اس لیے کہ وہ ظلم کر رہا ہے. ان معنوں میں ڈکٹیٹر کہا جا سکتا ہوگا. لیکن جب کہنے والے نے کہہ دیا تو پھر یہ آسمان کی آواز بند ہو گئی. اور اگر یہ مجھے وہ تکلیف جو اس شخص کو پہنچی اگر مجھے معلوم ہوتی مثلا تو میں اس کی تائید میں کھڑا ہوتا, وہ اس کے دل کی تکلیف میرے دل کی تکلیف بن جاتی, میں اس کی طرف سے بات کو کرتا. اور بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ اگر کسی عہدیدار کو توفیق نہیں ہے کہ وہ جھک کر معافی مانگے تو میں اس کی طرف سے جھک کر معافی مانگتا ہوں, اور جس کو تکلیف پہنچی ہے اس کو کہتا ہوں کہ اصل ذمہ دار میں ہوں, میرے ماتحت ایک شخص نے یہ حرکت کی ہے, اور میرا فرض ہے کہ تم سے دل کے ساتھ معافی مانگی جائے, اگر یہ نہیں مانگتا تو میں مانگتا ہوں. اور اس سے دلوں کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. بس نظام جماعت تو ایک لاسانی نظام ہے, اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے. اس کو چھوٹی ادنا ادنا باتوں سے ذلیل و رسوا نہ کریں. اگر آپ نے اس نظام کی قدر نہ کی تو یہ سوچیں کہ یہ نظام پہلے بھی ایک دفعہ اٹھا لیا گیا تھا ناقدری کے نتیجے میں, اب دوبارہ خدا نے آپ کو نعمت دی ہے اور الحمدللہ کے اس وعدے کے ساتھ دی ہے یہ نظام اب ہمیشہ رہے گا, مگر ناقدری کرنے والوں کو سزا ضرور ملے گی. اس لیے احتیاط سے کام لیں, जैसा कि मैंने बयान किया है, आपको यानी निजामे जमात के ताबे रहते हुए अमीरी का सवाल नहीं, किसी भी अहदेदार से कोई शिकायत हो वो मुझे लिख सकता है, खा वो छोटा अहदेदार हो खा वो बड़ा अहदेदार हो। और मैं जमात को पहले कह चुका हूं कि मेरे बोझ की फिक्र न करें, अगर मुझ तक तकलीफ से बातें ना पहुंचे तो मुझे तकलीफ होगी, लेकिन हो सकती ये शर्त है, अगर तकवा के खिलाफ कोई झूठी बातें पहुंचेंगी तो फिर लाजमन ऐसे शख्स को सजा दी जाएगी। वो दोहरा जुर्म करता है, खलीफा वक्त को धोखा देता है और खुदा के निजाम से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है। सच्ची शिकायत हो, सच्चे तरीक पर पहुंचे, जिसके खिलाफ शिकायत है उसकी मार्फत भिजवाई जाए, उसकी नकल मुझे भिजवा दी जाए, फिर देखे लाजमन कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई वो होगी जो तकवा तकाजा करता है। बाज़ लोग समझते हैं कि हमारे हक में जरूर होगी, हालांकि बिल्कुल गलत बात है। बाज़ दफा ऐसे से जालिमाना इल्जाम अहदेदारों पर लगाए जाते हैं कि पहला खत पढ़ के तो पांव तले से जमीन निकल जाती है कि अच्छा जमात में ऐसे से खौफनाक अहदेदार भी हैं। जब तहकीक की जाती है तो बात बरक्स निकलती है, शिकायत कुनंदा जालिम निकलता है। अब मैंने तो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर फैसले करने हैं, शिकायत कुनंदा के दिल की हालत को देखकर तो फैसले नहीं करने हैं। जब मैं फैसला करता हूं तो वो फिर बाद दफा कह देता है, बाद दफा दिल में रखता होगा, फिरोजी खलीफा के पास भी इंसाफ नहीं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं कि खलीफा भी डिक्टेटर नहीं है, क्योंकि खलीफा के ऊपर सबसे ज्यादा मुख्तदर और ताकतवर हस्ती बैठी हुई है जो हर वक्त उसकी निगरानी करती है। हजरत अब्दुल खलीफतुल मसीह अव्वल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये लाहौरियों का फितना सर उठाने लगा था, अपने एक जलाली खुतबे में यह फरमाया कि तुम्हें खुदा ने बांध कर मेरे ताबे कर दिया है, तुम अहदे बैत से मजबूर हो, तुम्हारी मजाल नहीं होनी चाहिए कि मेरे सामने बात करो और आवाज उठाओ, लेकिन अगर मैं गलती करता हूं, मैं शिकायत करता हूं, मुझसे शिकायत है, तो मुझसे बाला हस्ती जो सारी कायनात में सबसे बाला हस्ती है उसके पास मेरी शिकायत करो, उसको शिकायत करो कि ये बुड्ढा मुझे हमें ये तकलीफ दे रहा है। और फरमाया कि खुदा मुझे उठा लेगा इस दुनिया से, मुझे यहां बाकी नहीं रखेगा, क्योंकि उसकी खातिर तो मेरी अताअत कर रहा है, मेरी खातिर तो नहीं कर रहा है। इसलिए जिस खलीफा के ऊपर ऐसा मुख्तदर खुदा बैठा हो जिसके कब्जे कुदरत में जिंदगी और मौत हो, उस शख्स के खिलाफ उस ऐसे खलीफा के खिलाफ शिकायत तो सबसे बड़े दरबार में होती है। बस ना निजाम खिलाफत आमरियत से कोई मुशाबियत रखता है, ना निजाम अमारत सिलसिले का कोई ओहदा भी ऐसा नहीं जिसमें आमरियत की जर्रा भी खूबू पाई जाए। लेकिन एहबाब जमात को तकवा से काम लेना चाहिए, इस निजाम को खूब अच्छी तरह जहनशीन करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और जब खुदा ताला ने ये सारे निजाम रस्ते रखे हुए हैं शिकायतें दूर करने के, इनको अख्तियार किया जाए। जब भी एक शख्स अपनी शिकायत को सही रस्ते पर चलाने की बजाय दूसरे लोगों तक पहुंचाता है जिनका ताल्लुक नहीं है, तो इससे कई किस्म की खराबियां पैदा होती हैं। अव्वल ये कि वो शिकायत जब किसी और भाई से करता है या बहन से करता है तो अपने दिल का गुबार उसी से निकाल लेता है, फिर खुदा को उसका कुछ नहीं देता। और एक तरफा बातें करते हुए बसा औकात अहदेदार जिससे शिकायत है उसके खिलाफ बदतमीजी भी करता है, गालियां भी दे जाता है उसको, और कई किस्म के ऐसे नाजायज फिक्रे कसता है जिसके नतीजे में वो मजलूम जो था वो जालिम बन जाता है, फिर जिससे बातें करता है उसको नुकसान पहुंचा देता है। वो शख्स अगर तकवा के आला मुकाम पर नहीं है तो उसकी बातें सुनकर आगे मुतलका अहदेदार को पहुंचाने की बजाय उसके खिलाफ रद्देमल दिखाने की बजाय वो अपने दिल में बिठा लेता है और उससे हमदर्दी शुरू कर देता है, फिर हाँ हाँ ये तो दूसरी जाति हो गई, उसको एक और दोस्त मिल गया, फिर उससे एक और मुनाफिक दोस्त बन गया, फिर उससे एक और मुनाफिक दोस्त बन गया। इस तरह बजाय इसके कि किसी शिकायत का इजाला हो, उस शिकायत से बहुत बढ़कर एक रूहानी बीमारी जमात में फैलने लग जाती है। एक अमीर ने किसी को गाली दे दी, फर्ज करें अगर वो बर्दाश्त कर ले खुदा की खातिर, दुनिया से तो गालियां खाता रहता है, किसी की इज्जत का तो कोई मुहाफिज नहीं हो सकता सवाए खुदा के। खुदा की खातिर अगर सब्र कर जाए या जैसा कि मैंने कहा शिकायत करे तो उसका हक है, लेकिन जब वो इर्द गिर्द माहौल में हमदर्दियां लेने लगता है तो यहीं से पार्टियों का आगाज होता है, यहीं से फितने बनते हैं। और बदनसीबी से नारवे की जमात में भी इस किस्म के फितने पैदा होते रहे। मुख्तलिफ वक्तों में मैंने दबाया और बाद में मेरी चिट्ठियां आ जाती थी कि हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम अगर मुलव्वज़ थे तो माफी मांगते हैं। लेकिन कब तक इस तरह चलेगा? एक वक्त था जब नारवे की जमात से मुझे बड़ी मोहब्बत थी, मैं बड़े शौक से यहां आया करता था, बहुत दिन यहां ठहरता था, मुल्क भी खूबसूरत है, कभी मुझे रिलैक्सेशन के लिए वक्त नहीं मिलता, साल साल दो दो साल तक तो मैं बचा लेता था इस वक्त को कि नारवे जाकर लूंगा, चंद दिन यहां अलग चला जाया करता था। लेकिन जब से आप लोगों ने यह हरकतें शुरू की हैं, मेरा इस मुल्क में आने को दिल नहीं करता, इस तरफ देखने को दिल नहीं करता, यह लफ्ज मेरे लिए दुख का मुझे बन गया, तकलीफ का मुझे बन चुका। कहां कहां से तुम लोग आए हो, किस खुदा की खातिर हिजरतें की हैं और यहां आकर उस नेक अमीर से यह सलूक किया जो बड़े मुत्तकी इंसान था और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ बहुत ही मेहनत करके जमात की जिम्मेदारियों को संभाला, यहां तक कि वो दिल बर्दाश्ता हो गया। उसने कहा ये पाकिस्तानी अजीब मखलूक हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, मैं तो अहमदियत की वजह से इनसे ताल्लुक रखता था, अगर यही अहमदियत है तो फिर मैं नुकसान में हूं। ऐसा भी वक्त उन पर आया कि जब वो ठोकर भी खा सकते थे मगर मुत्तकी को खुदा खुद हाथ रख के बचा लेता है, जिसके अंदर बीमारी हो वो नहीं बचा करता। उस ठोकर से तो बच गए लेकिन उसके करीब जरूर पहुंच गए थे। खुद उन्होंने मुझे लिखा कि मेरे पर एक ऐसा वक्त आया था कि मैं यूं लगता था कि किनारे तक पहुंच चुका हूं, और वजह यही थी कि कुछ जमातों में कुछ बदतमीज लोग, निजाम जमात के साथ गुस्ताखी से पेश आने वाले, छोटे छोटे कमीने झगड़े करने वाले, बात बात पर एक दूसरे को गालियां देने वाले, ऐसे लोग वहां से बदनसीब आ गए थे जिन्होंने सारे तालाब को गंदा किया हुआ था, और अभी भी उसके बद असरात मौजूद हैं। इसलिए आपको तकवा से काम लेना चाहिए। जहां तक उमरा का ताल्लुक है, उनसे गलतियां जैसा कि मैंने बयान किया होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो उमरा बात करते हैं और आज भी कर रहे हैं वो ये है कि जब खलीफा वक्त उनको एक खुली खुली नसीहत करता है उसको नजरअंदाज करने का उनको कोई हक नहीं। जमात की अदम तरबियत की एक बड़ी वजह यह है कि सारी जमात तक खुलफा के खुतबे नहीं पहुंचते। मैं जब जोर देता हूं कि मेरे लफ्जों में जमात तक की आवाज पहुंचाया करो तो मुझे जरा भी शौक नहीं है अपने खुतबे पढ़वाने का, नाउज बिल्ला में जारे मुझे इस किस्म की अगर ये नाउज बिल्ला दिखावा है तो मैं इस दिखावे पर लानत डालता हूं। मगर मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है कि बड़ी मेहनत के साथ, बड़े सोच विचार और दुआओं के साथ मैं एक तरबियत का प्रोग्राम बनाता हूं, मुद्दतों उस प्रोग्राम पर वक्त खर्च करता हूं, और मेरा दिल चाहता है कि हर अहमदी मेरी आवाज में मेरी बात खुद सुन ले, अगर नहीं समझ सकता तो उसके तर्जमे उस तक पहुंच जाएं, और उन तर्जमों को सुनकर, क्योंकि वो अल्फाज दिल की गहराई से निकलते हैं, खा उनकी फजाहत और बलावत के लिहाज से उनमें कैसे ही लफ्ज़ क्यों ना हो, लेकिन बड़ा फर्क है जो सच्चे दिल से, दिल के दर्द से बात उठती है उसका और असर होता है। लेकिन उमराबाद एक मख्फी तकब्बुर की वजह से, बाद अहदेदार हैं जो सिलसिले के मुरब्बी हैं उन्हीं को अमीर मुकर्रर किया गया है या अहदे दिए गए हैं, सबसे पहले उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि इन बातों को हम पर अमल करें। लेकिन मख्फी तकब्बुर से मुराद यह है उनको पता नहीं कि वो मुतकब्बिर हैं, वो समझते हैं खलीफा वक्त की बात पहुंच गई ठीक है, हम जो इसका खुलासा तैयार कर देते हैं बस वही काफी है, और हमने बात पहुंचा दी और फर्ज पूरा कर लिया। उसके नतीजे में कई नस्लें तबाह हो सकती हैं, उनको ये पता नहीं कि वो कितना बड़ा बोझ उठा रहे हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। अभी स्वीडन से मैं आया हूं, वहां एक बच्ची, अहमदी बच्ची ने मुझे उठकर कहा रजना के मैं हाजिर हुआ, मैंने कहा आपसे बराह रास्त भी बात करता हूं, कोई किसी किस्म का सवाल करना हो, कोई शिकायत करनी हो बेतकल्लुफी से करें। एक बच्ची ने उसके कहा कि आज तक हमें स्वीडिश जुबान में आपका खुतबा नहीं पहुंचाया गया, और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, लोगों से हम सुनते रहते हैं। उसने कहा हम यहां पले हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, हमें उर्दू नहीं आती और हम मजबूर हैं, और हमारा हक है कि हमें भी पता लगे कि शरीफ वक्त हमसे क्या तकाजे करता है। मैं हैरान रह गया देखकर ایک تجربہ کار پرانا مربی ساری نور کا واقف زندگی ملک کا امیر ہو اور بار بار سننے کے باوجود علم ہو رکھنے کے باوجود ان لوگوں سے غافل ہو ان ضرورتوں سے غافل ہو اور مقامی مربی بھی اسی طرح ایک تربیت یافتہ پرانے بہت ہی وفادار انسان اپنے دوسری کوڑیوں کے لحاظ سے مرتہ لیکن بچوں سے غافل ہے ان کو کیوں خیال نہیں آیا کہ نظام جماعت کا فرض ہے کہ ان تک فیزیکس زبان میں خطبہ پورے کا پورا پہنچایا جائے جن جماعتوں میں اخلاص ہے تقویٰ ہے وہاں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی ہے کام کرنے میں عربی زبان میں ہمارے پاس بہت تھوڑے ماہر ہیں لیکن بعض ایسے ہیں جن کو عشق ہے نظام جماعت سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے اور خلافت سے ایسی وفا کا تعلق ہے کہ اس کی مثال کم دوسری جگہ نظر آتی ہے ہمارے ایک ایسے بزرگ سید ہرمیہ شافی ہیں وہ ہفتہ نہیں گزرتا کہ انگریزی سے اس کا عربی ترجمہ کر کے ساتھ ساتھ بھجواتے رہتے ہیں اور وہ سلسلے کے ملازم نہیں ہیں تنخواہ دار نہیں ہیں وقت نہیں ہے ان کے اپنا وقت ہے اپنی کمائی کے لیے الگ ان کو وقت دینا پڑتا ہے صرف وہی نہیں بلکہ اور بہت سی کتب کے وہ تراجم کر چکے ہیں اور بہت سے نظام جماعت کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں لیکن ایک شوق ہے اور ذمہ داری کا احساس ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطبات ایسے ہیں جن کو ہر عرب کے تک پہنچنا چاہیے احمدی عرب کا حق ہے کہ اس تک یہ آواز عربی زبان میں پہنچے ان کو علم ہے اس بات کا لیکن جو بعض عمراں ہیں بعض پرانے مربی ہیں ان کو احساس نہیں میں نے اس سے پہلے کئی دفعہ خطبوں میں اشارتاً بغیر نام لے کے یہ باتیں سکھائیں سمجھائیں لیکن جن تک بات نہ پہنچنی وہ نہیں پہنچتی معلوم ہوتا ہے ان تک بات نہیں پہنچتی اگر ان کے دماغ میں یہ بات پہنچ جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو پھر ساری جماعت تک ضرور پہنچے گی بس بلاک وہی کیا کرتا ہے جو اوپیک ہو اوپیک کہتے ہیں ایسی کثیف چیز کو جو روشنی کو اپنے تک پہنچا کر وہیں ٹھہرا دیتا ہے اور روشنی اس کی سطح تک رہتی ہے اور شفاف وہ چیز ہوتی ہے جو اپنے میں سے روشنی گزرنے دے بس جو کثیف چیز ہو اس سے روشنی اس لیے نہیں گزرتی کہ خود اس کے اندر بھی تو داخل نہیں ہوئی ہوتی جس کے اندر روشنی داخل ہو جائے اس مادے سے روشنی ضرور باہر بھی نکلتی ہے پھر اور دوسروں کو بھی فیض پہنچاتی ہے اس لیے باقی امور میں ایسے عہدیدار ہاں کیسے ہی نیک کیوں نہ ہوں مخلص ہوں فدائی ہوں عمر بھر کی خدمتیں ہوں لیکن بعض دفعہ ایک معاملے میں مخفی تکبر کا شکار ہونے کے نتیجے میں یا بے وقوفی کے نتیجے میں جو بھی آپ کہہ لیں وہ کسی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے ہوتے اس سے بہت بڑا نقصان جماعت کو پہنچا رہے ہوتے ہیں دوسری بعض جماعتیں ہیں جہاں ایک ہی آدمی ہے وہ فوری طور پر اکیلا سارا بوجھ اٹھاتا ہے اور تراجم کر کے پھر ان کو کثرت سے شائع کراتا ہے اور ایسی جماعتوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دن بدن معیار ترقی پر ہے اور ساری جماعت کو پتہ لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساؤتھ انڈیا میں ایسی جماعتیں ہیں جن اردو نہیں سمجھتی وہاں ہمارے مولوی محمد عمر صاحب مبلغ سلسلہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جنون دیا ہوا ہے کہ ادھر کام تک آواز پہنچی ادھر فوراً اس کے ترجمے کیے اور ساری جماعتوں تک پہنچائے وہاں سے جو جماعتوں کے خط ملتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں ان کو افریقہ کا بھی پتہ ہے ان کو امریکہ کا بھی پتہ ہے ان کو چین جاپان کا بھی پتہ ہے جماعت کے سارے مسائل کا علم رکھتے ہیں اور ان کے خطوں میں روشنی ہے یوں معلوم ہوتا ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر مجھ سے بات کر رہے ہیں لیکن جہاں یہ خطبات نہیں پہنچتے وہاں بچے ہوں یا بڑے ہوں وہ بےچارے کٹے ہوئے ہیں جماعت سے اور خدا تعالیٰ نے جس کی ذمہ داری ڈالی ہے آخری اس سے کٹ کر تو پھر روحانی ترقی نہیں ہو سکتی اس لیے بہت ہی اہم باتیں ہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں امیروں کی نعوذ باللہ ناجائز حمایت کرتا ہوں میں ان کی ہر بات پر نظر رکھتا ہوں جہاں تک پیش چلے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں اور کئی دفعہ سرزنش سے بھی کام لینا پڑتا ہے جماعت میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے مجھ تک پہنچائیں میں نہ پوری کروں اس کو اور آپ اپنے آپ کو سچا سمجھیں خدا کے دربار میں میری شکایت کریں आपकी हदें तो वहां तक पहुंचती हैं जहां किसी दुनिया की दुनिया वाले की हद नहीं पहुंचती। खुदा से खुदा तक और कौन पहुंच सकता है आपके सिवा, क्योंकि आप खुदा की जमात हैं, खुदा की खातिर अताअत करने वाले हैं। इसलिए इस निजाम में जो ऐसा पाकीज़ा इलाही निजाम है, दुनियादारी की बातें तो पनप सकती ही नहीं, ना पनपने दी जाएंगी। मैं फिर आपको नसीहत करता हूं कि इन बातों में अपनी इस्लाह करें, तक्वा से काम लें, क्योंकि जैसा कि मैंने अब शुरू किया है, ये बातें आम खुतबों में मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि सारी दुनिया की जमातों को पता चले कि तरबियती मसाइल हैं क्या और किन किन तरफों से उनको खतरे दरपेश हैं, तो मुतनब्बे हो जाएं। और अगर ये बातें सुनने के बावजूद उनके अहदेदारान तक्वा से काम ना लें और खलीफे वक्त की हदायात पर अमल न करें या उनसे नाजायज सलूक करें, ज्यादती करें, तो मैं हाजिर हूं जितना बोझ चाहे मुझ पर डालते जाएं। अल्लाह ताला है जो बोझ उठाने की तौफीक बख्शता है और अपने फजल से तौफीक बढ़ाता चला जाता है, इसलिए इस बात की बिल्कुल परवाह न करें। मेरा बोझ तो वो बोझ है कि मुझे इल्म न हो कि क्या हो रहा है, किसी मुल्क में जाऊं वहां के बच्चे उठ उठ के शिकायतें करें कि हमें तो पता ही नहीं आप क्या कहते हैं, हमारी तरफ भी तो तवज्जो करें, हम भी तो हक रखते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि तकवा की बारीक राहों के मुहाफिज और निगरान हो जाएं। शैतान बारीक राहों से दाखिल होता है, यानी मुत्तकियों के पर हमले करने के लिए शैतान हमेशा बारीक से बारीक राहों से दाखिल होता है ताकि वो नजर ना आए। जो गैर मुत्तकी मोटे मोटे आम लोग हैं उन पर तो खुले खुले हमले करता है और फिर भी उनको नजर नहीं आते। मगर ये ख्याल छोड़ दें कि आपके रूहानी तरक्यात के मसाइल एक दफा हल हो चुके और आपने सारी मनाजिल तय कर ली, कोई दुनिया में नहीं है जो सारी मनाजिल तय कर सके। इंजील का मुताला करके देखें, शैतान ने तो हजरत मसीह को भी धोखा देने की कोशिश की, जो खुदा की तरफ से सबसे आला मनसब पर यानी नबूवत के मनसब पर फायज फरमाए गए थे, भेद बदलकर उनका भी इम्तिहान लेने की कोशिश की, हजरत अय्यूब के भी इम्तिहान लेने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे नेकों और मुत्तकियों पर बहुत बारीक राहों से हमले करता है। और चूंकि अल्लाह ताला उनको नूर बसीरत अता फरमा चुका होता है, वो खुदा के नूर से देखते हैं, इसलिए उन बारीक राहों पर वो निगरान और मुहाफिज रहते हैं, उस तरफ से भी किसी दुश्मन को मजाल नहीं होती कि उन पर हमला कर सके। तो अपने इस मयार को, रूहानी मयार को बढ़ाएं और अपनी बारीक राहों की निगरानी करें। मक्खी तरीक सब जैसे जब शैतान आपके ऊपर हमला आवर हो, खा वो आवाज किसी नेक आदमी की तरफ से आ रही हो, दरअसल वो शैतान की आवाज है। नेक आदमी एक मुल्क का अहदेदार, एक मुल्क का सदर भी बार दफा समझ रहा होता है कि मैं बहुत मुत्तकी और बुजुर्ग हूं और बात ऐसी कर रहा होता है कि शैतान उसको आलाकार बना रहा होता है। आम आदमी तक बात पहुंचती है तो कहता है कि ये देखो ये फलां ने कही है, इतने बुजुर्ग मुत्तकी इंसान ने। हालांकि बात पे छानी जाती है, वो भी नहीं आती। ये हो कैसे सकता है कि तकवा के खिलाफ हो बात हो उसमें बदबू ना हो? मुत्तकी को बदबू आ जाती है, उसका दिल जरूर उसको मुतनब्बे कर देता है इस बात में है कुछ बात, कोई ऐसे खतरे की बात है जो ये बात लायक काबिल कबूल नहीं गई। और हर इंसान को खुदा ने ऐसा नूर जरूर अता फरमाया है कि अगर वो इस बरवक्त तंबीह को जो उसकी अपने जमीर से उठ रही होती है उसको कबूल करे, उस पर गौर करे, तो अल्लाह ताला के फजल से हर फितने से वो निजात पा सकता है। आखिरी बात इस मामले में, यानी आज के खुतबे में, वैसे तो ये शायद ये मजमून आगे और भी बढ़े, लेकिन आज के खुतबे में आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि ये ऐसी मुश्किल बातें हैं कि दुआ के बगैर चारा नहीं है। दुआ के जरिए मदद मांगे, दुआ के जरिए नई जिंदगी हासिल करें, दुआ के जरिए इन सब फितनों से बचने की कोशिश करें। तौबा करनी है तो खुदा के हुजूर तौबा करें, मुझसे माफी मांगना बिल्कुल बेमानी है अगर दिल में तौबा न पैदा हो चुकी हो। और खुदा से इस्तिग़फ़ार करते हुए मुसलसल दुआएं मांगें कि खुदा आपकी हिफाजत फरमाए। अगर आप नहीं चीजों को देख सकते तो खुदा तो देख सकता है, वो चाहे तो जिस तरह चाहे अपनी तकदीर को हरकत देकर आपको ठोकरों से बचा सकता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि जो काम ظاہری طور پر ہماری تدبیر کے بس میں نہیں اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں. دعا سے ان کاموں کو کریں اور دعا ہی سے ہماری تدبیر میں بھی جان پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.